समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लवलीन निगम और मेरे साथ है मेरे को होस्ट नरेश माको। नरेश, नमस्कार।
नमस्कार लवलीन, गुड इवनिंग लिसनर्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन फेवरेट न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। वी आर हियर टू अपडेट यू विद द लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स सेंट इन बाय आवर रीजनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, आवर डेटलाइन इंडिया ऑन द टॉपिक अनयूजुअल वेदर कंडीशंस, एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड we shall pay rich tributes to prominent personalities associated with today's date. So without much ado, let's get started with the news of the hour. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi says 25 crore people came out of poverty in the last 10 years of the NDA government.
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों और श्रमिकों के कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई।
75 delegates from 23 countries arrive in India to witness Lok Sabha elections.
भारत ने कहा ऑनलाइन कट्टरपंथ वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है।
NEET 2024 for admission to undergraduate medical programs to be held across the country tomorrow.
और IPL में आशा अब बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस से।
And now time for our segment Dateline India, in which we are going to take a look at the unusual weather conditions. This summer, various regions of the country are grappling with heatwave conditions, painting a picture of extreme weather phenomena. However, there is an evident lack of uniformity in the weather pattern stretching across the expansive geographical canvas of the country. This morning, Delhi recorded a minimum temperature of 23.3 degrees Celsius, a notch below the season's average. The weather office has predicted a generally cloudy sky with a possibility of drizzle and strong surface winds during the day.
और बीच बीच में हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन भीषण गर्मी का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, झारखंड और तमिलनाडु में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिम राजस्थान में भी अगले दो तीन दिन यही स्थिति जारी रह सकती है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि केरल और तमिलनाडु के समुद्र में ऊंची लहरों का प्रकोप बना रहेगा। यह स्थिति आज रात 11:30 बजे तक बनी रह सकती है। फिलहाल समुद्र की लहरें शांत हैं। केरल के समुद्री तट पर अभी तक ऊंची लहरें उठने की कोई खबर नहीं है। नीचे के तटीय क्षेत्रों में ऊंची लहरों के कारण समुद्र जलस्तर में वृद्धि होने की आशंका से केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस घटना को स्थानीय तौर पर कल्लकाडल के नाम से जाना जाता है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुद्र तट पर मनोरंजक गतिविधियों को रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं और लोगों को समुद्र तट पर न जाने की सलाह दी है।
सो लवलीन, कंपेयर टू हाउ इट वाज व्हेन वी वर यंगर, व्हेन वी वर यू नो चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन एंड देन वी ग्रेजुएटेड, ड्यूरिंग दोज टाइम्स एंड बिटवीन नाउ the weather patterns have changed significantly. I remember there used to be proper well-defined summer, well-defined monsoon, and winters and all. And now they have shifted, so the winters barely start at the end of December now. Earlier, you know, we used to feel chilly even in October, remember?
जी, दशहरे के आसपास ठंड हो जाती थी और अमूमन माना जाता था दिवाली की ठंड होली तक रहेगी, होली से गर्मी आ जाती थी। अब बहुत ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण वो चेंज हो गया।
Absolutely, and that is what the scientists are saying, that climate change is actually contributed to more frequent, severe and longer heat waves during summer months. and most glaciers in the high mountain region in Asia have lost significant mass because of record-breaking high temperatures and dry conditions. More often than not, we see pictures of these huge glaciers melting away into the sea and increasing the sea levels as well. You know, that is what is resulting in unusual floods also in some parts of the world.
Extreme ho raha hai, barish hoti hai, bahut hi zyada hoti hai, aur garmi bhi ekdam extreme pe jaati hai.
And they say that the two key reasons behind the hot temperatures are El Nino state and the persistent presence of anticyclone systems. Unfortunately, this year began in El Nino, which refers to an abnormal warming of surface waters in the equatorial Pacific Ocean.
और इसीलिए लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है. प्यास न लगने पर भी खूब पानी पिएं. बाहर निकलते समय छाते का उपयोग करें या सर ढक के चलें. खुद को हाइड्रेट रखने के लिए ओआरएस घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी, नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन करें. निर्जलीकरण हीट स्ट्रोक या अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली किसी अन्य बीमारी से बचने के लिए कमजोर व्यक्तियों जैसे पुरानी बीमारी वाले लोग, शिशु और बच्चों तथा बुजुर्ग लोगों की दिनचर्या पर भी नजर रखी जानी चाहिए. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. नरेश, आज कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
मेरा ख्याल है नागालैंड से किए जाए शुरुआत. क्या कहते हैं?
जी जरूर कीजिए.
इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी लिसनर्स, डॉटेड बाय अ वाइड रेंजिंग वैरायटी ऑफ कस्टम्स, रिचुअल्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. वन सच वाइब्रेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री इज द मात्सु फेस्टिवल, विच अकर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे. This year, it started on the 1st of May and concluded on the 3rd of May, which was yesterday. This festival is celebrated by all tribes of Nagaland, a festival of community bonding celebrated in the first week of May every year after the season of sowing is over. As a celebration, the villagers express their friendship for each other by exchanging gifts, making new friends, feasting, bonfire, etc. This festival is marked by lively and high-spirited songs and dances. Here is the report.
Mawsa is a three-day harvest festival celebrated in the first week of May by the Ao tribes, primarily in the district of Mokokchund or wherever they are. The Aos perform dances as an expression of thanks to the god for a good harvest. After the rigorous effort of cleaning fields, burning jungles, seeding crops, cleaning up of tubu, meaning wealth, and repairs and construction of houses by elders, the festival gives people a three-day period for recreation and entertainment. Originally, the Mawsa used to be held for 6 days. This three-day festival is seen as a sort of reward for those who have put in lengthy hours in the fields. The women folk dress in their traditional fineries, join the men folk in composing warrior songs. Villagers sing songs to eulogize the lovers and the village folk as a whole. The elders encourage the youth to be bold and heroic for defending the villages from enemies, a custom continued from the headhunting days. Mawsa festival is also an occasion to strengthen bonds of friendship with other Naga tribes. For Parikrama, Asonyo from Kohima.
भारत सरकार के पहल के अंतर्गत देश भर में विभिन्न राज्यों के चुनिंदा जिलों में प्रौढ़ बीसीजी टीकाकरण अध्ययन अभियान की शुरुआत की गई है. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले की पहचान हुई है जहां टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. और जानकारी हमारे सहयोगी राकेश चंद्र लाल से.
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्षय रोग मुक्त करने और इससे ग्रसित लोगों के उपचार के लिए शुरू किया गया यह टीकाकरण अभियान इस वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इन द्वीपों में भी शुरू किया गया. राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पी लाल ने बताया कि 30 मार्च से हर शनिवार यह टीका दिया जा रहा है और अब तक 2400 लोगों को टीका लगाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो डुमरामार्ग करते हैं या मधुमेह से ग्रसित हैं या जिनका वजन कम है और जो शायद कुपोषण के शिकार हों उन्हें यह टीका दिया जाएगा. इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को यह टीका लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष के दौरान तपेदिक के मरीज जिनका इलाज किया जा चुका है उन्हें और साथ ही पिछले 3 वर्षों के दौरान टीबी के इलाज से ठीक हुए लोगों के परिजन जो हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं उन्हें भी यह टीका दिया जाएगा और ऐसे सभी लोगों को तपेदिक की बीमारी है या नहीं इसकी भी जाँच की जाएगी. टीकाकरण अभियान चलाने से पहले स्वास्थ्य केंद्र के लोगों ने घर घर जाकर सर्वेक्षण कर लोगों की पहचान की और उसके बाद लोगों में इस अभियान की शुरुआत हुई है। राज्य क्षय रोग अधिकारी ने कहा कि जो लोग टीबी से अब भी ग्रसित हैं उन्हें यह टीका नहीं दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं या बहुत अधिक बीमार लोगों को भी यह टीका नहीं लगाया जाएगा। टीका लगाने से पहले मरीजों से दोबारा पूछताछ की जाती है और उसके बाद ही उन्हें यह टीका दिया जाता है। टीकाकरण अभियान का उद्देश्य तपेदिक मुक्त भारत की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। परिक्रमा के लिए पोर्टगढ़ से मैं राकेश चंद्रलाल।
In Kerala, a new species of marine tardigrade was found and named after Chandrayaan 3. A report.
In Kerala, the researchers from the Department of Marine Biology, Cochin University of Science and Technology, CSAT, have discovered a new species of marine tardigrade, colloquially known as water bears, a phylum of the eight-legged segmented microanimals. This microscopic organism has been named as Batilipus chandrayani as a homage to the Chandrayaan 3, the first ever successful lunar South Pole landing mission hosted by the Indian Space Research Organization, ISRO, in 2023. This newly described species was found in the intertidal beach sediments of Mandapam Coast, Tamil Nadu. The present species is similar in size to other tardigrades, measuring around 0.15 mm in length and 0.04 mm in width, characterized by four pairs of legs. The researchers said that, much like the space mission to unravel the secrets of the moon, Batilipus chandrayani represents the vast potential for scientific discovery that lies hidden within our oceans. Tardigrades are among the toughest animals on Earth, which have survived all five mass extinctions, also the first known animal to survive after exposure to outer space. Mayusha for Parikrama from Tiruvananthapuram.
Project Swastik's thrilling celebrations mark BRO's 65th anniversary in Sikkim. Mofma correspondent.
In celebration of the 65th Rising Day of the Border Road Organization BRO, Project Swastik orchestrated a series of captivating activities showcasing the organization's commitment to excellence and community engagement. Amidst the breathtaking landscape of North Sikkim, Project Swastik hosted a spectacular bike rally featuring 9 skilled bikers navigating through challenging terrains. Commencing from the iconic Rangma Range, the rally wound its way through scenic locales including Lachen, Jima, Dongkela Pass and Lachung before returning to the starting point. The event not only honored BRO's legacy of connectivity but also highlighted the exceptional skill of its personnel. The rally was flagged off by people of Lachen, witnessed by various civil society members. Riders were warmly welcomed at key stops including Lachen, Thangu, Sivamandir and Lachung, where they engaged with locals, spreading awareness about BRO's initiative to restore connectivity in the region. In the vibrant city of Gangtok, over 300 BRO personnel led by Chief Engineer participated in an energetic walkathon covering a distance of 2.5 kilometers. Starting at the plant nursery between Tasi Viewpoint and Ganeshtok, the route led participants on a scenic journey culminating at Tasi Viewpoint. The walkathon embodied the spirit of BRO's mission to foster unity and progress. This event underscored BRO's unwavering dedication to enhancing connectivity, promoting adventure and strengthening community bonds. As the organization commemorates 65 years of service, it looks ahead to continuing its journey of innovation and service for the years to come. Diliram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
और अपने संवाददाताओं को यही जारी रखें नरेश, लोकसभा चुनाव चल ही रहे हैं पूरे देश में, पंजाब में भी लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान है उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राज्य में सातवें आखिरी चरण में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 7 मई को जारी की जाएगी और जानकारी हमारे सहयोगी।
पंजाब के दुआबा, माझा और मालवा के इलाकों में फैले कुल 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 4 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,12,71,246 है, जो कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 3,78,573 अधिक है। 4,89,631 युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सबसे अधिक युवा मतदाता सीमावर्ती लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में 48,000 से कुछ अधिक हैं, जबकि लुधियाना लोकसभा क्षेत्र में इसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे कम करीब 31,000 है। लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहा है और इन मतदाताओं को बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 2,55,000 से अधिक है और इनमें 5,100 से अधिक ऐसे मतदाता 100 साल से अधिक उम्र के हैं। इन सभी बुजुर्ग मतदाताओं को अपने घर से ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। सन 2019 के आम चुनाव में 65.94% मतदान दर्ज किया गया था। ऐसे में अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय लोगों को अपने मताधिकार के उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए पिछले कई दिनों से स्वीप कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चला रहा है ताकि भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्य इस बार 70 पार को हासिल किया जा सके। परिक्रमा के लिए जालंधर से शिशु शर्मा शांतल।
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अतुल कृष्ण घोष को याद करते हैं, जिनका 4 मई 1966 को निधन हो गया था। अतुल कृष्ण युगांतर समूह और अनुशीलन समिति से जुड़े थे। उनके महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के साथ घनिष्ठ संबंध थे।
अतुल कृष्ण का जन्म 1890 में नादिया जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक के अपने अंतिम वर्ष में वो बाघा जतिन से जुड़ गए और अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाघा जतिन ने हावड़ा साजिश मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद 1911 में समिति की गतिविधियों की जिम्मेदारी अतुल कृष्ण को सौंप दी और कोलकाता छोड़ दिया। अतुल कृष्ण ने एक आयोजक के रूप में क्रांतिकारियों को आश्रय दिया।
बाद में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों ने अतुल कृष्ण घोष के नेतृत्व में सेवा समिति की एक नई शाखा का गठन किया। इस दौरान अतुल कृष्ण ने रास बिहारी बोस, गुरदीत सिंह और अन्य कोमागाटा मारू देशभक्त तारकनाथ दास सहित कई क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा।
प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में अतुल कृष्ण घोष और बाघा जतिन ने जर्मनी में हथियार हासिल करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों को स्थिति की जानकारी हो गई और उन्होंने बालेश्वर पर हमला कर दिया, जहां हथियार पहुंचाए जाने थे।
बाघा जतिन इस कार्रवाई में शहीद हो गए और अंग्रेजों ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। अतुल कृष्ण को बाघा जतिन की मृत्यु से बड़ा धक्का लगा। उन्हें 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल बाद रिहा किया गया। 4 मई 1966 को अतुल कृष्ण का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।
हम स्वतंत्रता सेनानी कैसमबली चंगल राय रेड्डी को भी आज के दिन याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मई 1902 को कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। रेड्डी को मैसूर रियासत में महाराजा के शासन के स्थान पर एक स्थिर सरकार बनाने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है।
आजादी के बाद रेड्डी मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 में जब ये भारत संघ के भीतर भाषाई रूप से एक सजातीय कन्नड़ भाषी राज्य बना तो इसका काफी विस्तार हुआ और बाद में इसका नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कर दिया गया।
रेड्डी बहुत छोटी उम्र से ही एक क्रांतिकारी बन गए थे। उन्होंने 1930 में लॉ स्कूल से स्नातक होने के बाद प्रजा पक्ष की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मैसूर रियासत में एक स्थिर सरकार स्थापित करना और किसानों के हितों का समर्थन करना था।
ये संगठन जल्द ही प्रजा मित्र मंडली के साथ जुड़ गया और 1934 में प्रजा संयुक्त पक्ष या मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के रूप में एकजुट हो गया। केसी रेड्डी 1935 से 1937 तक मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के अध्यक्ष रहे।
1937 के बाद फेडरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई। रेड्डी ने इसके अध्यक्ष के रूप में मैसूर कांग्रेस का नेतृत्व भी किया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रेड्डी मैसूर राज्य में एक जिम्मेदार राज्य सरकार की मांग को लेकर मैसूर चलो आंदोलन में सबसे आगे थे। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने।
This is All India Radio, Bangalore and Bhadravati. Sri K.C. Reddy speaks on Gandhiji and independence.
Many countries gained their independence before and some later than India did. But what is remarkable about Indian independence is that it was achieved by non-violent means instead of resorting to violence. This aspect of Indian independence will ever be enshrined in the temple of history as unique and deserving of homage and adoration.
मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद उन्हें 1952 में मैसूर विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद वे 1952 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य और 1957 से 1962 तक कोलार से लोकसभा के सदस्य बने।
रेड्डी ने 1965 से 1971 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 1976 में मृत्यु तक रेड्डी लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में, जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा आज गुजरात टाइटंस से। यह मैच खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से। और अगर कल की बात की जाए, कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया मेजबान मुंबई इंडियंस को 24 रन से। अंक तालिका में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे स्थान पर है, जबकि मुंबई इंडियंस जो है वो 9वें स्थान पर है। और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज है जन्मदिन, जयंती या आज ही के दिन जिन्होंने इस दुनिया को कहा अलविदा। नरेश, शुरुआत हम करते हैं प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज से, जिनकी आज पुण्यतिथि है। बनारस घराने के तबला वादक पंडित किशन महाराज को कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया था। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार और वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। किशन महाराज ने तबला वादन के अपने शुरुआती समय में ही उस्ताद फरियाज खां, पंडित ओंकार ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी, वसंत राय, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान जैसे बड़े नामों के साथ संगत की। उन्होंने एकल तबला वादन में भी कई बार श्रोताओं के बीच समा बांधा, उनका मन मोह लिया। नृत्य की दुनिया के महान हस्ताक्षर शंभू महाराज, सितारा देवी, नटराज, गोपी कृष्ण और बेजू महाराज के कार्यक्रमों में भी उन्होंने संगत की। उन्होंने एडिनबरा और ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ कला समारोह के साथ ही कई अवसरों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर प्रतिष्ठा हासिल की। उनके शिष्यों में वर्तमान समय के जाने माने तबला वादक पंडित कुमार बोस, पंडित बालकृष्ण अय्यर, सुखविंदर सिंह नामधारी सहित अन्य नाम शामिल हैं।
Sending birthday greetings to Richard Dale Jenkins, born on this day in 1947, an American actor well known for his portrayal of deceased patriarch Nathaniel Fisher on the HBO funeral drama series known under the name of 6 Feet Under. He began his career in theatre at the Trinity Repertory Company and made his film debut in 1974, worked steadily in film and television since the 80s, mostly in supporting roles. His eclectic body of work includes such films as The Witches of Eastwick, Little Nikita, Flirting with Disaster, Snow Falling, on Cedars, etc., etc. Also sending birthday wishes to Randy Bruce Trewick, known professionally as Randy Travis, an American country music and gospel music singer and songwriter, as well as a film and television actor. Active since 1979, he recorded over 20 studio albums and charted over 50 singles on the Billboard Hot Country Songs charts, including 16 that reached the number one position. Amazing. Travis's commercial success began in the mid-80s with the release of his album Storms of Life, which sold more than 4 million copies. Let's listen to this beautiful number, Around the Bend, sung by him.
Just around the bend, nobody knows. Still, that's where everybody wants to go. Might be a mile right up ahead. All I really know is that I'm not there yet. When I was a child, I thought like a child. I had no fear of all things wise.
और अब बात करते हैं अन्ना चांडी की, जिनकी आज जयंती है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी को आज हम याद कर रहे हैं। अन्ना चांडी 1937 में एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अन्ना चांडी भारत में पहली महिला न्यायाधीश तो थी ही, दुनिया में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला भी थी। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी का जन्म 4 मई 1905 को भारत के तत्कालीन त्रावणकोर राज्य जो केरल में है वहां हुआ था, एक मलयाली सीरियाई ईसाई माता पिता के। वे केरल राज्य की पहली महिला थीं जिसने कानून की डिग्री प्राप्त की। 1928 में अन्ना चांडी न्यायालय सेवा में आई और त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान उन्हें सर सीपी रामास्वामी द्वारा जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे केरल उच्च न्यायालय में 9 फरवरी 1959 से 5 फरवरी 1967 तक न्यायाधीश के पद पर रहीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के कानूनी क्षेत्रों में महिलाओं के करियर रूपी आशाओं को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जन्म दिया, उनकी प्रेरणा रही।
जी, we are also sending happy birthday greetings to Anang Desai, born on this day in 1953, an Indian film and television actor. Desai has appeared in more than 100 television shows and 70 films, popularly known for his portrayal of the character Babuji in the television series Khichdi and its eponymous film. He is an alumnus of the National School of Drama and was a part of the Institute's professional repertory, performing Hindi theatre extensively before starting his career in the television and film domains. Also, sending birthday wishes to Pia Zadora, an American actress and singer. She debuted as a child actress on Broadway in regional theatre and the film Santa Claus Conquers the Martians in 1964. We'll listen to this number by, I'm sorry, we don't have a song for Pia Zadora, but we do have another birthday wish, Lavleen, for Tinu Anand, sometimes referred to as Virendra Raj Anand, who's an Indian actor, writer and director from Bollywood, who's most known as the director of Amitabh Bachchan's movies including Kalia, Shehenshah, Main Azad Hoon and Major Saab. He is the son of veteran writer Indra Raj Anand, brother of producer Bittu Anand and uncle of director Siddharth Anand. He portrayed an important role in the film Gajini, in 2008. So, and he's done some beautiful Bengali films as well, like Gopi Gayane, Bhagabayane as well.
और अब याद करते हैं कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता, प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्ति मार्ग के कवि। बात कर रहे हैं हम त्यागराज की, जिनकी आज जयंती है। उन्होंने भगवान श्रीराम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। उनके सर्वश्रेष्ठ गीत अब भी धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। त्यागराज ने समाज और साहित्य के साथ साथ कला को समृद्ध किया। उनकी विद्वता उनकी हर कृति में झलकती है। हालांकि पंचरत्न कृति को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है, वो अपनी कृतियों में भगवान राम को मित्र, मालिक, पिता और सहायक बताते थे। तंजावुर नरेश त्यागराज की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने त्यागराज को दरबार में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन प्रभु की उपासना में डूबे त्यागराज ने उनके आकर्षक प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया। और उनकी एक प्रसिद्ध कृति निधि चल सुखम, यानी क्या धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है, उसकी रचना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि त्यागराज के भाई ने श्रीराम की वो मूर्ति जिसकी पूजा अर्चना आदि त्यागराज किया करते थे वो पास की कावेरी में फेंक दी थी। त्यागराज अपने इष्ट से अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए और घर से निकल पड़े।
एंड यस लवलीन, दिस इज बेटर लेट देन नेवर, सो लेट अस लिसन टू द सॉन्ग व्हेन द रेन बिगिंस टू फॉल बाय पिया ज़ाडोरा। By Jesse Jackson. Jackson number 5, who was the second child of the Jackson family and the oldest Jackson brother, a wonderful singer, songwriter, and let's listen to the song Thanks to You, sung by him in 1973.
समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो लवली निगम और नरेश मागो को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। हम दोनों की तरफ से नमस्कार।